आर्या आरवर आयु के साथ दिल्ली पहुंच चुका था। वो इस वक्त अपने घर पर था। अंदर जाने से पहले आयु के पास शालू का कॉल आया, तो वो बात करने के लिए बाहर ही रुक गई। वहीं आरव जब आरव को लेकर वहां पहुंचा, तो अयान ने दरवाज़ा खोला। वो आरव को देखकर बुरी तरह चौंक गया। आरव को देखकर अयान की पूरी बॉडी में कंपकंपी सी उठी। वो लड़खड़ाकर गिरने वाला था, तभी आरव ने उसे थाम लिया। उसके पास खड़ी साक्षी को भी यकीन नहीं हो रहा था कि वो अपने सामने साक्षात आरव को देख रही है। साक्षी ने हैरानी से आर्या की तरफ देखा, तो उसने मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिला दिया। अयान के तो शब्द मानो उसका साथ नहीं दे रहे थे। आरव ने उसे पकड़ा हुआ था और वो उसे देखकर ईविल स्माइल करते हुए बोला, तुम तो अच्छे खासे उम्र में बड़े लग रहे हो। तुम्हारी जगह मैं होता तो माहिरा की तरह खुद को अच्छे से मेंटेन करके रखता। आरव जानबूझकर अयान को तंग कर रहा था, जबकि अयान की बॉडी भी बिल्कुल फिट थी और वो अपनी उम्र से काफी कम नजर आ रहा था। अयान ने नम आंखों से हंसते हुए कहा, इतना प्रूफ काफी है मेरे लिए कि आप मेरे ही भाई हो, लेकिन आंखें अभी भी यकीन नहीं कर पा रही है। आप जिंदा थे? आप तो उम्र में आर्या से भी छोटे लग रहे हो। ये कैसे पॉसिबल है? ऐसे लग रहा है जैसे टाइम में पीछे चले गए हो। तुम आरव ही हो ना, हमारे आरव? साक्षी ने भौंयें उठाकर पूछा। आरव ने उसकी तरफ देखा और हाँ में सिर हिलाकर कहा, हाँ मैं ही हूँ, और कौन हो सकता है? अब क्या सारे सवाल यहीं पर पूछ लोगे या मुझे अंदर भी आने दोगे? बोलते हुए आरव ने अयान को छोड़ दिया था, क्योंकि अब वो खुद को संभाल सकता था। आरव अंदर की तरफ आ रहा था। उसने चारों तरफ देखा और बोरियत भरे लहजे में कहा, डोंट टेल मी तुम इस घर में रहते हो। कितना बेकार इंटीरियर है यहाँ का। जरूर साक्षी की पसंद कर रहा होगा, ये काफी बोरिंग है। साक्षी ने उसे देखकर जबरदस्ती की मुस्कुराहट दी और धीरे से कहा, इसकी हरकतें फिर से शुरू हो गईं। कम से कम बेटे के सामने तो इंसल्ट मत करो, वरना मैं भी कहने पर मजबूर हो जाऊंगी कि तुम मरे हुए ही ठीक थे। आरव ने साक्षी की तरफ देखा और बेपरवाही से कंधे उचकाकर कहा, हाँ मर तो गया था, पर अफसोस कुछ लोगों की दिल की ख्वाहिश अधूरी रह गई थी, तो उन्हें पूरा करने के लिए फिर से जन्म ले लिया। सरप्राइज गाइज, द ईविल आरव खुराना इज बैक। हाँ वो तो दिख रहा है, पर कैसे? कुछ समझ नहीं आ रहा, अयान ने हड़बड़ाते हुए पूछा। आर्या उसकी बात का जवाब देते हुए बोला, यकीन तो मुझे भी नहीं हुआ था और कुछ समझ में भी नहीं आया था, पर उस कुदरत के आगे कहाँ किसकी चलती है चाचू। बहुत बार हम ऑपरेशन थिएटर में किसी ऐसे शख्स को ऑपरेट कर रहे होते हैं जिसको बचाना नामुमकिन होता है, फिर भी वो जिंदा हो जाता है और पूरी तरह ठीक भी। तो कई बार ठीक इंसान को भी हम नहीं बचा पाते हैं। इट्स ऑल अबाउट लक एंड डेस्टिनी। ठीक वैसे ही अचानक मुझे डैड मिले और रेस्ट इज हिस्ट्री। मेडिकल साइंस इसे कभी नहीं मानेगी, पर देखिए ना चाचू, ये मेरे डैड ही हैं। इन्हें सब कुछ याद है। वो तो तुम्हें बताने की जरूरत भी नहीं है कि इन्हें कुछ याद है या नहीं, इनकी हरकतों से ही पता चल रहा है। तो फिर से जन्म हुआ है आपका? अयान ने आरव की तरफ देखकर पूछा, जिस पर उसने हाँ में सिर हिला दिया। अयान जाकर आरव के गले लग गया। उसने नम आंखों से कहा, मैंने आपको बहुत मिस किया। यकीन नहीं हो रहा है, जिंदगी में एक ही दिन में मैंने अपने सारे अपनों को खो दिया। मॉम तो पहले ही चली गई थी और फिर आप और दादी भी, आयु, सब चले गए। आई एम सॉरी भाई, मैं आपको बचा नहीं पाया। अयान को मन ही मन गिल्ट फील हो रहा था, क्योंकि उस दिन आग लगने के बाद वो टाइम पर नहीं पहुंच पाया था। कोई बात नहीं, अगर मैं खुद को बचाना चाहता तो बचा सकता था, लेकिन मैंने ही खुद को फना कर दिया था। अपनी मिसेस खुराना के बिना जीने के बारे में सोच भी कैसे सकता था? आरव ने बुझी हुई आवाज में जवाब दिया। आयु का जिक्र होते ही अयान आरव से अलग हुआ। उसने मायूसी से कहा, हाँ मैंने उस दिन अपनी दोस्त को भी खोया था। मुझे खुशी है कि आज आप इतने सालों के बाद ही सही, लेकिन मेरी आंखों के सामने सही सलामत है। काश आपकी तरह आयु भी। अयान बोलते हुए रुक गया, क्योंकि उसकी नजर दरवाजे पर पड़ी जहां से आयु चलकर आ रही थी। उसे एक बार फिर झटका सा लगा। आरव ने उसे संभालते हुए कहा, क्या कर रहे हो तुम? बार बार नीचे गिरे जा रहे हो, कोई भूत थोड़ी ना देख लिया है? पूरी बात बता दी फिर भी ऐसे रिएक्ट कर रहे हो जैसे सामने भूत आ गया हो। वहीं आयु ने जब अयान को देखा तो वो और भी एक्साइटेड हो गई। वो जल्दी से उसके पास आई और उसके गले लग गई। अयान को लगा आरव की तरह आयु को भी सब कुछ याद है, इसलिए उसने खुश होकर उसे सहलाते हुए कहा, मैंने तुम्हें बहुत। अयान की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि आयु उससे अलग होकर बीच में बोली, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ डॉक्टर सिंघानिया। मैंने आपसे मिलने के लिए बहुत सारे मेल्स किए थे, लेकिन कभी जवाब नहीं मिला। यकीन नहीं हो रहा, आपको अपनी आंखों के सामने देख रही हूँ। आयु की बात सुनकर अयान ने सवालिया नजरों से आरव की तरफ देखा, तो उसने सिर हिलाकर कहा, इसे कुछ याद नहीं है और यही मेरे सबसे बड़ी सिरदर्दी है। वैसे इस बर्थ में आप दोनों का नाम क्या है? अचानक साक्षी ने पूछा। आरव ने जवाब में कहा, वही जो पहले था, मैं आरव खुराना था और वही रहूंगा, और मैं डॉक्टर आयु। आयु ने अपना हाथ आगे बढ़ाकर कहा, तो नाम भी सेम है, वैसे रिश्ता क्या है तुमने दोनों का? साक्षी ने आगे पूछा। उसका सवाल सुनकर आयु ने मुंह बनाया और कहा, इसने मुझसे जबरदस्ती शादी की है। हाँ, इससे और उम्मीद भी क्या की जा सकती है, साक्षी ने जवाब दिया। अयान अभी भी उन दोनों को गौर से देख रहा था। वो धीरे से बोला, सब कुछ मेरी आंखों के सामने है, फिर भी यकीन नहीं हो रहा है। इट्स अ मिरेकल आयु यहाँ है। भाई बिल्कुल ठीक है, इतने सालों बाद सच में दिल से खुशी हो रही है। वो पांचों साथ में बैठकर बातें कर रहे थे। अयान एक टक आरव और आयु को देख रहा था। आर्या ने आरव से पूछा, अब तो बता दीजिए, आप मॉम से कैसे मिले और आपने इनसे जबरदस्ती शादी क्यों की? रुक भी तो सकते थे, या इन्हें सब बताते, याद दिलाते, उसके बाद प्यार से करना चाहिए था ना? मेरे पास इतना टाइम नहीं था, आरव ने जवाब में कहा। अपने प्रोजेक्ट के लिए मुझे एक लैंड चाहिए थी जो इसकी बहन के नाम पर थी। मुझे लैंड चाहिए थी तो फिर सीधे सीधे इसकी बहन से शादी करने का प्रपोजल रख दिया। एक और आरव खुराना वाली हरकत, साक्षी ने आईज रोल करके कहा। उसके बाद आयु आगे बताते हुए बोली, इसकी वजह से मैं भी फंस गई। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी बहन की शादी इस गोल्ड डिगर से हो। एक्चुअली मेरी बहन मुझे 10 मिनट छोटी है, तो मैंने ये शर्त रख दी कि मैं बड़ी हूँ तो पहले मेरी शादी करनी होगी, और इसने मुझे भी फंसा दिया। इसकी वजह से डैड मेरी और मेरी बहन की शादी एक साथ करने के लिए तैयार हो गए। फिर मुझे अचानक सब याद आ गया और मैंने दूल्हा बदल दिया, बोलते हुए आरव ने आयु की तरफ देख कर कहा। वैसे सब कुछ काफी एक्साइटिंग रहा था ना? बेचारा निर्वाण मेरी वाइफ से शादी करना चाहता था। तुम जिसे बेचारा कह रहे हो उसे मैं पसंद करती थी, और तुम्हारी वजह से मेरी शादी टूट गई। मेरे भी कुछ अरमान थे जो अधूरे रह गए, आयु ने चिढ़कर कहा। बस करो, मैं तुम्हारे अरमान अच्छे से जानता हूँ। तुम निर्वाण से इसलिए शादी करना चाहती थी ताकि टॉप कर सको, तुम्हारा प्रोफेसर जो ठहरा वो, आरव ने सिर हिलाकर कहा। वो दोनों पहले की तरह ही फाइट कर रहे थे। पूरी कहानी सुनाने के बाद अयान ने कहा, भाई एक जन्म तो क्या, आगे 100 जन्म भी ले लेंगे फिर भी नहीं सुधरने वाले। वैसे दूल्हा कैसे बदला?
मैंने इसके डैड के सामने पहले रजिस्टर्ड मैरिज करने का प्रपोजल रखा और उन्होंने मान लिया। हमारी ट्रेडिशनल शादी होने से पहले रजिस्टर्ड मैरिज हुई थी, जिसमें मैंने डॉक्यूमेंट्स चेंज कर दिए थे। इसकी बहन की शादी इसके फेवरेट निर्वाण सर के साथ हो गई, और मेरी मेरी मिसेस खुराना के साथ, आरव ने मुस्कुराते हुए बताया। उसके इस तरह सब कुछ ग्लोरीफाई करके बताने की वजह से आयु उसे गुस्से में घूर रही थी। इधर उधर की बातें करने के बाद उन्होंने साथ में लंच लिया। साक्षी ने खाना बाहर से ऑर्डर करवाया था। खाना हो जाने के बाद भी उन्होंने काफी वक्त एक साथ में अच्छे से स्पेंड किया था। रात के वक्त आयु साक्षी और आर्या के साथ में थी। आरव अयान के साथ बाहर गार्डन में वॉक कर रहा था। चलते हुए अचानक अयान ने रोककर आरव से कहा, मैं आपको अच्छे से जानता हूँ, आप यहाँ ऐसे ही नहीं आए हैं। क्या कारण है आपका यहाँ वापस आने का भाई? बहुत अच्छे से जानते हो तुम तो मुझे। मुझे कबीर से मिलना है, मुझे अपने घर पर वापस जाना है, बदला लेना है। माहिरा लूथरा ने मेरी जिंदगी के साथ खेला आयान, मुझे उसकी जिंदगी के साथ खेलकर उसे पूरी तरह बर्बाद करना है, बोलते हुए आरव की आवाज़ सर्द हो गई। मैं पहले ही समझ गया था, कबीर यहाँ नहीं रहता है, वो मुंबई में ही है। मैंने उसे कॉल कर दिया था, आपके एसेट्स आजकल वही संभाल रहा है, अयान ने जवाब दिया। अयान ने पहले ही कबीर को कॉल पर आरव के बारे में सब कुछ बता दिया था, ताकि उसकी तरह कबीर को आरव और आयु को देखकर झटका न लगे। आरव ने अयान से सिर्फ कबीर से मिलने का ही कहा था, बाकी असली प्लान क्या था वो वही जानता था, और उसमें इसका एक ही शख्स साथ दे सकता था, और वो था कबीर। पुराने किरदारों की एंट्री हो रही है, क्योंकि कहानी पुराने कैरेक्टर्स के साथ ही चलेगी। चलिए मिलते हैं अगले पार्ट पर।